वितस्मृतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासियर्थं गणहरदेवीः कञ्चियं सम्मं प्रणमामि वत्सयुक्तो सुधनानुभूयं चरिषा इच्छामन्ते सुतभक्ते कासुकुपोतसारो अङ्गोऽङ्गपैने पावडपरमसुप्तपरमाणोगपुपगयचूलिया देव सुतत्तैस्विदं कहाय शयानुष्कलवञ्चे पूजे मन्दानमं सामि दुःखकौ कमको गोहिला सुगैगमनं समायमरणं जनूनसम्पत्तिभूमजम् अप्राणिक स्वाध्यायवेलायां श्रीमदाचार्यभक्तिकाय सुजलदीपारगीप स्वपरमतविभावना पटमदीप्य सुचरित तपो निधेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो छत्तीश गुण समज्ञी पंचव्याचार करण संदर्शि शिष्यानुग कुशले दम्मायिरे सदा बंदी गुरुभक्ति संजमेनिय तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मन मरणं न पावीति ई नित्यमृत मंत्र होम निरता ध्यानाप्रियो त्राकुला षट्कर्मा कृता स्तपोदनदना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रेरणा चंद्रार्कते योधिका मोक्षद्वारक पाठ पाठन पटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामंति आर्य भक्ति का सुखभूत सारोचिव समनान समध्वंस समचरिचुत्तान पंचव्याचाराण आयरान आयरादेशान उदेशान उज्जयान त्रियन गुण पारणियान सवसान शयानुष्कल वंची पूजे मंदानम सामि दुख कौ कम को गोविला सुख युवा स्वरूपं द्रव्यगुण पर्यायानाम एकत्वम एव द्रव्यम व्याचष्टे पर्याय का स्वरूप द्रव्य गुण और पर्याय इन तीनों का एकत्व ही द्रव्य है ऐसा कहा जा रहा सो विविनस्यदि जायते विशेष रूपेण सवद्रव्येषु द्रव्यगुणपज्ञानम् एतं वत्तु परमार्थम् वही जो विनाश को प्राप्त होता है वही उत्पत्ति को प्राप्त होता है सभी द्रव्यों में वह कौन सी स्थिति है विशेष रूपेण पर्याय की विवक्षा में सब द्रव्यों में वह पर्याय नाश को प्राप्त हो रही है और उत्पाद को प्राप्त हो रही है कोई भी द्रव्य हो चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो चाहे मूर्त हो चाहे अमूर्त हो सभी द्रव्यों में वह पर्याय नाश को प्राप्त हो रही है और पर्याय उत्पाद को प्राप्त हो रही और ये भी ध्यान रखना चाहिए द्रव्य गुण और पर्यायों का एकत्व ही परमार्थ से वस्तु का स्वरूप है इसको यदि नहीं मानते नहीं जानते तो फिर भी बन जाएगा क्योंकि देखने में नहीं आ रहा नहीं मानते एगड़बड़ नहीं जानते तो अज्ञान है अज्ञान के कारण और ज्ञान इतना लंबा चौड़ा हमारे पास कहाँ है हम नहीं जानते ठीक बहुत अच्छी बात मानते हो क्या नहीं तो जाने तो माने ऐसे बात नहीं है नहीं जानने में जब स्थिति रहती नहीं जानने की वहीं पर मान्यता की बात आती है पहले मानना होगा फिर बाद में जानना होगा आज का विज्ञान पहले जानता है फिर बाद में मानता है और पहले का जो सम्यक ज्ञान है वो पहले मानता है फिर बाद में जानता है कितना अंतर है बहुत अंतर हो गया जो कुछ भी चीज की मान्यता है उसके लिए पहले कसो अरे देखने में नहीं आ रहा थे किसको कसो कमर कसो पहले हाँ क्या कसो कस करके देखो अरे कस करके देखो तो देखने में आ जाए तो देखे जब वह स्थिति आती ही नहीं सामने ही नहीं आती तो फिर अंधभक्ति हो जाएगी अंधश्रद्धान हो जाए आहा अंधश्रद्धान तो फिर भी ठीक है लेकिन एक काने का जो श्रद्धान है वो ठीक नहीं एक आंख का जो एकांत रूप से
ये उसको ज्ञात ही नहीं कि भीतर क्या और बाहर क्या, और कसो किसको कसो, बाहर के भी कसना चाहिए और भीतर को भी कसना चाहिए, पहले को भी कसना चाहिए और आगे का भी कसना चाहिए और वर्तमान को भी कसना चाहिए, पूरा कसना चाहिए। एक अधूरा कस करके आप निर्णय लेते हैं, ये भी विज्ञान की नीति ठीक नहीं है। और प्रकारांतर से किसी भी क्षेत्र में जाओ, सर्वप्रथम मान्यता, फिर इसके उपरांत ही ज्ञान का व्यवहार। एक विज्ञान वैज्ञानिक बना जिसके लिए 20 साल लग गए, साइंस को लेकर के चल गया, 20 साल हो गए शोध आदि करके वैज्ञानिक घोषित हो गया, और उससे प्रभावित होकर के एक विद्यार्थी गया और कहता है कि हमें भी बताओ, आपने जो अनुभूति की है उसे हमें बता दो। अब वो बताने के लिए तैयार हो जाए तो मैं पूछना चाहता हूं, 20 साल में जो अनुभूति की है 20 साल के उपरांत, अब 5 मिनट में क्या अनुभूति बताएगा? और दूसरी बात यह है, उस अनुभूति बता भी सकता हो लेकिन इस सामने वाले को क्या ज्ञान होगा? कुछ भी नहीं। फिर मान्यता के माध्यम से भी स्वयं को भी वह निश्चित कर लेता है कि मुझे भी वैज्ञानिक बनना है, और उस जैसा वह संकेत देता है उसके अनुसार पढ़ना प्रारंभ कर देता है। इसका पढ़ना ज्ञान के माध्यम से हो रहा है क्या मान्यता के माध्यम से हो रहा है, सोचने की बात है। तो मान्यता क्या होती है, यही बात है, दर्शन के क्षेत्र में हम तो अंतर क्या आया है, साइंटिफिक वे हम समझ में नहीं आता। वे का अर्थ क्या होता, वे का अर्थ दो होते हैं, वे का अर्थ होता है रास्ता और वे का अर्थ होता है लहर है? वेवजार बोलते ना, वेव, तो बहुवचन मत बनाओ, एक वचन ले लो कोई बात है, वेव वेव वेव। अब थोड़े बहुत नियर पे खींचतान करके हम कर लेंगे, हम वैज्ञानिक तो है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में पर्याय को तो हम पकड़ नहीं सकेंगे, और पर्याय का जो स्रोत है द्रव्य, उस द्रव्य समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ज्ञान के अभाव में भी मान्यता ही प्रथम स्टेज पर आ जाती है। प्रत्येक क्षेत्र में आप जाओ, 20 साल के उपरांत उन्हें जो अनुभूति हुई है उसका श्रद्धान आज का बालक कर सकता है, इतना निश्चित है। सिद्धांत करने के लिए, मान्यता को स्वीकारता देने के लिए कि 20 साल की कोई आवश्यकता नहीं, वह अविवेकपन माना जाएगा कि हम 20 साल के उपरांत पढ़ करके ज्ञान करके फिर बाद में मान्यता दे देंगे, तो ये गलत है। क्योंकि मान्यता के बिना वह स्टडी भी नहीं कर सकेगा, मान्यता के बिना भी जिसे प्राप्त करना है, जिसको प्राप्त है उसका यदि वह गौरव गाथा नहीं गाता है तो उसको प्राप्त कैसे होगा? ये निश्चित है, अनुभूति और श्रद्धान मान्यता दो भिन्न भिन्न चीजें हैं। पहले श्रद्धान फिर बाद में अनुभूति, पहले श्रद्धान फिर बाद में अनुभव। इतने नए कोर्स पूर्ण करने के उपरांत ये पूछा जाता है, कोई भी MBBS पास कर ले तो डायरेक्ट वह अपने यहां उस पेशी को चलाने के लिए एकदम खोल नहीं सकता अस्पताल, किंतु किसी के पास जा करके एक दो साल प्रैक्टिस इसको बोलते हैं, वह करना अनिवार्य होता। फिर इसके उपरांत एकदम उसके दुकान चले, ये भी कोई नियम नहीं, लेकिन चलाने के लिए ये तो कम से कम एक दो साल चाहिए। ये क्या है, ये यही है, सब कुछ ज्ञान होने के उपरांत भी अनुभूति के लिए 2 साल और लग गए हैं, और ज्ञान ही नहीं है और पहले से मान्यता हम नहीं देंगे तो नहीं दो तो मत दो, होगा नहीं। केवल ज्ञान का जो विषय है, आज की बुद्धि क्या कहती है कि यह ठीक नहीं है, उन्होंने क्या जाना, उन्होंने क्या कहा, ये तो आज है ही नहीं, और आज की मान्यता इस चलती है कि ठीक है, हमारे बुद्धि क्या ठीक है। केवल ज्ञान का जो विषय है क्षय ज्ञान का जो विषय है वह सूक्ष्म ज्ञान का विषय नहीं बन सकता, लेकिन श्रद्धान का विषय तो अवश्य बन सकता। श्रद्धान बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए मोक्ष मार्ग में श्रद्धान को पहले रखा है, उसका अपने आप में पूज्यता विद्यमान है। तो वस्तु परमार्थभूत क्या है? द्रव्य गुण और पर्याय वाला, यही एकमात्र परमार्थ द्रव्य है। द्रव्य को हम केंद्र मान ले, द्रव्य को हम केंद्र मान ले, गुण को हम व्यास मान ले और पर्याय को हम परिधि मान ले, हो गए तीन चीजें। परिधि तो देखने में आ जाती है, परिधि देखने में आ जाती है, केंद्र देखने में नहीं आता। लेकिन केंद्र को जब तक स्थापित नहीं किया जाता कोई भी परिधि खींच नहीं जा सकती। पहले द्रव्य चाहिए, केंद्र में ने द्रव्य, उस द्रव्य के मान्यता के बल पर ही हम परिधि को खींच सकते हैं। परिधि मान लो 10-10 फीट की व्यास, मान लो 10-10 फीट की व्यास है उसकी, तो 10 फीट को वहां घेरा हो गया परिधि, वहां जिसको परिधि बोलते हैं, तो 10 फीट को हो गए। अब ऐसी स्थिति में केंद्र तो देखने में नहीं आ रहा, लेकिन केंद्र के बिना वह रिंग का आकार कोई वस्तु है ही नहीं, पोल पट्टी नहीं है उसमें। उसको हम भले ही पोल पट्टी कह दें, लेकिन वह रेखा जो खींची गई है बिना केंद्र पर स्थिर हुए, वो रेखा का खींचना संभव ही नहीं। एक सिद्धांत है तो कोई पर्याय मानता है लेकिन केंद्र को नहीं मानता है, तो वह इतना बड़ा अपराध हो जाता है। जैसे व्यवहार काल को तो मान लिया जिसको पर्याय बोलते हैं, और ओरिजिनल निश्चित द्रव्य को नहीं माना, ऐसी भी मान्यता जैनियों के यहां है, तो वह बात नहीं बन सकेगी। परिधि में ने पर्याय, वो पर्याय आई कहां से? बिना केंद्र का संबंध नहीं तो नहीं आ सकते। फिर वह केंद्र से परिधि तक पहुंचने के लिए कौन जाएगा? उसी का नाम तो गुण है, कि वह गुण हमेशा हमेशा, देखो पर्याय का नापतोल अलग होता है, पर्याय का नापतोल अलग होता है, लेकिन पर्याय तक केंद्र का संबंध जोड़ने वाला, इसका नाम व्यास बोलते हैं। उस व्यास में कहीं भी कम वेशी नहीं रहती, किसी भी कोण से आप एक रेखा खींच दो, एक परिधि से इस छोर से उस परिधि तक छोर तक, किंतु वह केंद्र से गुजरना चाहिए। उसका नाप हमेशा हमेशा एक सा बनेगा। जैसे मान लो 1 फीट व 1 फीट जो वर्तुल एक थाली है, तो कहीं भी आप उसको नाप लो 1 फीट ये आएगा। जम्बुदीप का व्यास जो है, इसको विस्तार भी बोलते हैं, विष्कम्भ भी बोला जाता, विष्कम्भ को विस्तार भी कहा है, तो उसका 1,00,000 योजन प्रमाण कहीं से भी आप नाप लो, लेकिन परिधि के इस कोने से इस कोने से सीधे नाप लेने चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़े से तिरछा करके चले जाओ, सीधे रेखा खींचो और वह केंद्र से गुजरना चाहिए। एक छोर से दूसरे छोर तक उस व्यास का नाप एक सा आ जाता है, इसको बोलते हैं गुण। अर्थात उस व्यास का संबंध प्रत्येक परिधि की छोर से दूसरी परिधि की छोर तक समान रहता है। द्रव्य में हमेशा हमेशा फैल करके गुण रहा करता है, तो परिधि तक छूने वाली वह रेखाएं जो केंद्र से गुजरती हैं, वह समान समान ही पाई जाएंगी। तो कितने होंगे ये, उसके भी एक संख्या है, ऐसा नहीं कि अद्वा तद्वा आप करते चले जाओ। हम इसके हिसाब से देखते हैं तो कि एक वर्तुल में या एक केंद्र को लेकर के हम चलते हैं तो उसमें 360 अंश होंगे, मुख्य रूप से 360 तो गिनना पड़ेगा ना, 360 ही होते हैं, नहीं नहीं वो नहीं, एक केंद्र को वर्तुल को लेते हैं, वर्तुल को भले वह एक फीट का जो है वर्तुल है मान लो व्यास को लेकर के, या 10 फीट का भी हो जाए तो भी उसमें जो 360 ही अंश होंगे, तो 360 अंश यह बता रहा है कि केंद्र में इतनी क्षमता है, यही हो गया द्रव्य, और परिधि हो गई पर्याय, क्योंकि जहां तक द्रव्य है और गुण व्यास है वहीं तक परिधि की खिंचाव रहती है, इसके बाहर नहीं रह सकते। जहां तक व्यास का विस्तार रहता वहीं तक परिधि, तो परिधि के साथ व्यास का संबंध रहने से और व्यास का संबंध केंद्र से गुजरता हुआ वह रेखा है, इसलिए तीनों की समष्टि हमेशा बनी रहती है, इसी का नाम द्रव्य। कोई भी व्यक्ति परिधि को विषय बना लेता है, कोई भी व्यक्ति उस व्यास को विषय बना लेता है, कोई भी व्यक्ति उस केंद्र को विषय बना लेता है, बात एक ही है, तीनों की समष्टि भिन्न भिन्न नहीं, एक समष्टि है। कभी द्रव्य को विषय बना लो, कभी गुण को विषय बना लो, कभी पर्याय को विषय बना लो, कोई बाधा नहीं, आपका वह तत्व एक माना जाएगा। इसलिए कहते हैं द्रव्य गुण पज्ञानम एकत्वम वत्तु परमत्वम, द्रव्य गुण और पर्याय वाला जो कुछ भी परमार्थ है वही वस्तु है। लेकिन हम लोगों की दृष्टि में क्या आती है, केवल परिधि पहले आती, आकार पहले आता है, स्वर्ण बाद में आता है, स्वर्ण की चेन, स्वर्ण का मुकुट, स्वर्ण का हार, नहीं समझे, स्वर्ण का पानी, स्वर्ण नहीं वो पानी पर्याय है, स्वर्ण का घट पर्याय, स्वर्ण का मुकुट पर्याय, स्वर्ण का हार पर्याय, सब में पर्याय दिख रही है। लेकिन हमें मुकुट चाहिए, ठीक है लोहे का बना कर दे दो, नहीं क्यों, हमें मुकुट तो चाहिए तब मुकुट ले लो, हमें हार चाहिए लोहे की चना बना लो और बना करके दे दो भाई तो क्या बोलते हैं उसको चने, चने मतलब मणि, मणिका लोहे के मणिका बना दो, हाँ गुलिया गुलिया और दे दो पहन लो गुलिया कहेंगे भैया मनिया ठीक है, मणिका मणिका कहे तो बहुत अच्छी बात है, ले लो लोह की मणिका बना करके दे दो, हम ये नहीं चाहते। तो फिर आपको हार चाहिए कि क्या चाहिए, हार तो चाहिए लेकिन सोने की चाहिए, मतलब द्रव्य की ओर दृष्टि गई ना, पहले तो हार, पहले हार, तो हार केवल देते हैं तो वह हार जाएगा। पहले सोचो कौन सी पर्याय होनी चाहिए, तो द्रव्य के अनुरूप पर्याय होते हैं, क्योंकि द्रव्य की और पर्याय की एक गठबंधन स्थिति है। इसको जिसने अपने श्रद्धान में उतारा है उसको कभी भी दिक्कत नहीं होती है। सुन लिए हार पहन लो तो कौन से हार पहनो, अब सोना है, अब सोना है तो पीला होना चाहिए, पीला तो पीतल को भी होता है, नहीं भैया कस लो, अब क्या कसाओ, कसावट कहाँ है बताओ, अब वो भी पीला ये भी पीला, अब उसको हल्का भी होता भारी भी होता है, मृदु भी होता है और पीला भी होता है, उसके चिन्ह होते हैं, कसोटी पर कस करके फिर बाद में यह निर्णय लिया गया है, द्रव्य होना चाहिए सोना, गुण होना चाहिए पीला, पीला वजनदार मृदुता, एक गुण हो गया, फिर बाद में हार चाहिए तो कोई बात नहीं हार ले लो, तीनों इसमें आ गए। लेकिन लोगों को क्या दिखता है, हार दिखते हैं, ऐसे थोड़ी पहचान लेगी यह सोना है ये पीला ही है और वो सोने का ही है, कुछ नहीं। इसलिए ज्यादा विशेष यदि मान लो आभरण वगैरह पहनना चाहते हैं, कोई व्यक्ति करोड़ रुपए खर्च नहीं कर सकता है, लेकिन वह व्यक्ति आजकल का क्या करता है वो भी उसी प्रकार पहन करके चमक दमक करके आता है, ज्यादा खर्च करने की क्या आवश्यकता, लेकिन उसकी जो गुणवत्ता गुण है वो अपने आप में भिन्न होते हैं। तो ऐसे ही रेडीमेड आजकल के कई लोगों के श्रद्धान हुआ करते हैं, रेडीमेड श्रद्धान ऐसे हुआ करते हैं जो गुणवत्ता तो है नहीं, और द्रव्य किसी को भी मान लिया स्वर्ण है ऐसे मांग करके अपने एक ग्रुप बना लेते हैं 10-20 व्यक्ति और वहां थप्पा लगा देते हैं, तो यह बिल्कुल सौटंच सोना हो गया। ऐसा नहीं होता, इसका एक अपना सिद्धांत होता है। स्वर्ण तो स्वर्ण माना जाता है, द्रव्य कहो गुण कहो पर्याय कहो, पर्याय अलग नहीं है, गुण अलग नहीं है और द्रव्य अलग नहीं, तीनों की समष्टि एक है। तो केंद्र, व्यास और परिधि, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। किसी भी वस्तु के बारे में इन तीनों को लेकर के चिंतन करना चाहिए, चाहे वह आप पुद्गल द्रव्य को ले लो, चाहे वह धर्म द्रव्य को ले लो, चाहे और किसी द्रव्य को ले लो, चाहे चेतन को लेगे तो इसी रूप में ले लेना। चेतन का भी अब आकार क्या खींचोगे आप? चेतन का यदि आकार खींचना चाहेंगे तो वह निराकार है, ये उसका आकार हो गया। उसका गुण क्या है? ज्ञान और दर्शनमय है, वो आंखों के द्वारा देखने में नहीं आता, ये हुआ है। उसका केंद्र क्या है? उसका केंद्र आत्मद्रव्य है। तीनों ही अमूर्त सिद्ध हो गए। अब हमें उसको जानना है तो कैसे जाने? तो वह पेंसिल नहीं है, अब वह माइक नहीं है, अब वह किताब नहीं है, अब यह पेंडाल नहीं है, अब यह धरती नहीं है, वह भवन नहीं है, आदि आदि आप लेते चले जाए। केंद्र में आपके दृष्टि में विश्वास में आत्मद्रव्य क्या है, यह जिज्ञासा यदि है तो वहीं तक आप खींचिए। निराकार उसकी परिधि हो गई, ज्ञान दर्शन उसके व्यास हो गए, और आत्मद्रव्य उसके केंद्र में बैठा हुआ, ये वो एक परमार्थ सत्य है। यह श्रद्धान जिसके अब देखा नहीं गया, लेकिन इस नेगेटिव के माध्यम से, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक विधेयक और एक निषेधक, निषेधक के माध्यम से अब हम विधेयक की ओर जा सकते हैं, यही एकमात्र हमारे पास रास्ता है। यह नहीं होना चाहिए, रूप रसगंध स्पर्श नहीं होना चाहिए, यह जो आंखों के सामने आकार आ रहा है यह आकार नहीं है, और इसका जो कोई भी ठोस पदार्थ है वह द्रव्य हमारा नहीं है। यह श्रद्धान हो गया, परमार्थ सत्य हो गया, इसमें तीनों चीजें आ गई। जैसे आप लोग अपनी चीज को अपनी चीज मानते हैं, यह हमारी नहीं है, यह पराई है, तो हमारे नहीं कहने का अर्थ ही पराई है, अपने आप सिद्ध हो गया। पराई है ऐसे कहने से हमारा नहीं है, अपने आप सिद्ध हो गया। बार बार बताने की क्या आवश्यकता? दो वाक्यों के द्वारा विश्लेषण किया जा सकता है, यह हमारा नहीं है, हमारा नहीं है तो उनका है सिद्ध हो गया, उनका है तो हमारा नहीं है, ये अपने सिद्ध हो गया। अब कहने की बात क्या है कि फेंक दो? नहीं, जब तक सिद्ध नहीं होगा कौन से कोर्ट में जाओगे सिद्ध करने के लिए? ये तो सिद्ध करो, ये तो सिद्ध है। जब अपना नहीं है तो उसको छोड़ने में क्या, फिर किसको? अरे इसको ये पूछो नहीं, पहले ये हमारा नहीं है तो फेंक दो ना, फिर दूसरा कोई लेगा तो तुम्हारा तो नहीं है ना, वो क्यों दिक्कत हो रहे हो? हा? क्या श्रद्धान कमजोर है इसलिए फेंक नहीं रहे? तो फिर कौन सा श्रद्धान चल रहा बताओ? फिर वह परमार्थ तत्व क्या है? उसका कोई आकार है, प्रकार है? उसकी कौन सी गुणवत्ता है? वो क्या वस्तु है? इधर उधर के बातें इकट्ठे करके रख ली, ताला लगा दी और बैठ गई, ये मेरा है। सही पूछो तो सही पूछा यार, एकांत में जाकर के पूछ लो मन को, हे मन ये किसका है? तो कहेगा यहां तक तो नहीं 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 नहीं, नहीं हमारा ही है। तो गलत हो गई है, श्रद्धान गलत हो गया। ये हमारा नहीं महाराज, लेकिन छोड़ा नहीं जा रहा, ये फिर भी ठीक है। आज आहार के लिए दो व्यक्ति आए थे और वो पहले से जाकर के चौके में उपस्थित हो गए। अब हम तो कह नहीं सकते कि यह या के नहीं है, फिर भी कर दिया। मन सिद्धि वचन सिद्धि काय सिद्धि आर्जन सिद्धि। तो चौकीवाल ने पूछा इन्हीं के पढ़ना है तो पढ़ गया था, पढ़ गया तो नहीं, हम झूठ तो नहीं बोल सकते। हमने कहा इसके हाथ से तो ले लेना चाहिए। कम से कम देखो ऐसा है, उन्होंने इतना तो किया, अब इन लोगों ने पढ़गाया भी नहीं ना, हम इतना के हैं, इसे चौकी के हैं, तो हम कैसे ले, जब हमारे सामने सामने दिख रहा है इतने के है ही नहीं, चौकी वाले कोई भी गवाह नहीं दे रहे हैं इतने के हैं। ये कहते महाराज ले लो ले लो, ले तो ले, तो बताओ ना यही के है सदस्य, वो नहीं बताते। हाँ कल से तो गड़बड़ रहा है, तो क्योंकि चौकी वो हले भी नहीं दे पाते हैं, बाहर से आ जाए तो कैसे ले, दिक्कत हो है। ढील तो दे दे लेकिन ढील तो कितना बताओ। 50 व्यक्ति आ जाए और चौकी वाले का नंबर ही ना आए। कई लोगों की शिकायत है हमारे यहाँ चौके में आहार होते हुए भी एक ग्रास देने के लिए नहीं मिलता, और बाहर वाले हम एक ग्रास तो 50 व्यक्ति आ जाते, कैसे ले। आप देने की अपेक्षा से देख लो, फिर आपने भाग्य को आजमा लो। क्या बात हो गई, इतना तो कर सकते हैं, कृत है, कारित है, अनुमोदन है, सभी तो है, देखना चाहिए। है तो दुर्लभ चीज है, दुर्लभ चीज है, उसके बारे में प्रतीक्षा करना चाहिए, भावना करना चाहिए, और जो दे रहे हैं उनका सराहना करना चाहिए। पहले के व्यक्ति श्रद्धालु बहुत अच्छे थे, वैज्ञानिक आज का युग हो गया कि यह संतोष है। पहले जो कोई भी भक्त समी शिखर जी वगैरह चला जाता था और वह वहां पर हो करके यात्रा करके आ जाता था, उसके चरणों को बिल्कुल दूध से धुल करके और वह चरण रज लेते थे लोग। क्यों, अब ये समी शिखर जी और कौन सा, हम जा नहीं पाए लेकिन तुम तो जा करके आए, और इससे बढ़कर के कौन सा है, बस उल्लास मनाते थे। आज इसलिए वही यहां से बैठ गए, इंदौर से बैठ गए हैं सीधे आश्रम से और वासना झील तक जाकर के बिना खाए जाकर के वहां पर उतर जाओ, वहां पर भोजन कर लो, नीचे उतार बस, कितनी चाहो उतनी वहां पर वंदना कर लो, बीच में आश्रम बना लो, होता ही रह लो। ये तो उसका महत्व कम होता जा रहा है, जिसका जितना महत्व रहेगा वह आस्था का विषय रहता है, उसको उसी रूप में सेवन करो तो अपने आप में बहुत ही। उधर दक्षिण से उधर से निकलते हैं समीर शिखर जी कहने से, समीर शिखर जी कहें तो भैया गिरनार भी उसके साथ ही हम करेंगे, बार बार आना जाना नहीं होता। हाँ एक साथ हाँ नहीं, ये श्रद्धान का विषय है ना। तो उसी भी द्रव्य को उसकी गुण उसकी पर्याय और उसके द्रव्य इन तीनों को लेकर के हम सोचेंगे तो अपने आप ही पानी पानी और दूध दूध दोनों हो जाएंगे पृथक, और उसमें जो आनंद आता है कि यहाँ यह आत्म तत्व है, भले आप मत छोड़ो, छोड़ा नहीं जा रहा है ठीक है हम जान रहे हैं, लेकिन कम से कम सत्य को स्वीकार तो कर लो। हाँ हमने पढ़गाया तो नहीं, देने की भावना चाहे ले लो। कई लोग इस प्रकार कहने से तो पढ़ाने के लिए आ जाते हैं बीच में, और पहले 5 रहते हैं फिर बाद में 50 की संख्या होती है, तो अब कहां जाएंगे समझ में नहीं आता। प्रतिदिन क्योंकि अब कैसे क्या करें समझ में नहीं आता, किसी को 2 परिक्रमा हो जाते, किसी को 1 परिक्रमा हो जाते, किसी को 3 हो जाते, किसी को नहीं भी होते दहल में चल जाते। ऐसे कैसे, देखो आप लोग विधि के अनुसार नवदा भक्ति होनी चाहिए, और भक्ति में सच्चाई भी होनी चाहिए, भाग भाग करके आ जा। हमने देखा कि उधर वहां पर पढ़ाने के लिए खड़े थे, यहाँ पर आज देखते हैं तो वही व्यक्ति यहाँ पर दिख रहा, उन्हें कहीं कभी विक्रिया तो नहीं इन लोगों की। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ वैसे तीसरी चौके में भी वही दिखा। ये कहां से आया? ये निश्चित बात है भागता चला गया हो। होता है कि नहीं बताओ, ऐसा होता है कि नहीं? होता है नहीं? सही बात तो सुन तो कहो कम से कम। उस समय तो हम बोल नहीं सकते, मुंह कहने से दूसरे की ओर देखते ये लोग, जैसे हमारे लिए कुछ कही नहीं जा रहा होता। सब एक सत्य द्रव्य है, उसका गुण है, उसकी पर्याय है, वही परमार्थ है। आत्म तत्व की गवेषणा करो तो आत्मा का द्रव्य कैसा है, उसके गुण कैसे हैं, उसकी परिधि में पर्याय क्या है, वहीं तक हमारा उपयोग केंद्रित रहे, इसके आगे न बढ़े। क्या हो गया? हाँ, खिसक रहा है। हवा से अच्छा द्रव्य गुण पर्याय का परिणाम ने सर्वद्रव्य चेतना चेतना सर्व वस्तु सोपी सामान्य स्वरूप द्रव्यत्व सामान्य आदि विशेष रूपेण पर्याय स्वभावेन विनश्यति विनाशम गच्छति जायते उत्पद्यति च। सभी द्रव्यों में चेतना चेतन सब द्रव्यों में वह द्रव्यत्व सामान्य आदि जो है विशेष रूप से पर्याय की अपेक्षा से नाश को प्राप्त हो और वह उत्पाद को भी प्राप्त। अतएव द्रव्य गुण पर्याय नाम द्रव्यत्वम द्रव्यम उत्पाद द्रव्य युक्तम जीवादिकम गुण द्रव्यत्वादि सहभाविना गुण विकारा पर्याय क्रम भाविन परिणाम। और उत्पाद में द्रव्यात्मक जो सत्य है वही जीवादिक द्रव्य है, गुण जो द्रव्य के साथ हमेशा हमेशा चलने वाले हैं, और गुणों के विकार पर्याय जो कि क्रम क्रम से हुआ करती हैं। गुणों के विकार अर्थात गुण और द्रव्य को एक मान करके ही चलें, ये ध्यान रखना। द्रव्याणि च गुणाश्च पर्यायाश्च द्रव्य गुण पर्यायाः तेषां द्रव्य गुण पर्यायानां एकत्वं समुदायः परमार्थ सत्वभूतं निश्चयेन वस्तु। इन्हीं तीनों की समष्टि जो एकत्व है वह निश्चय से वस्तु परमार्थ है। वसन्ति द्रव्य गुण पर्यायः अस्मिन् इति वस्तु। वस्तु की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? वस्तुनि अस्मिन् वसन्ति द्रव्य गुण पर्यायः इति वस्तु, इसी का नाम वस्तु है। कई कई बार बोलते हैं ना, वस्तुतः क्या है, मतलब द्रव्य की दृष्टि से है क्या चीज, बोलते ना वस्तुतः बताओ आप इधर उधर की बातों में, वस्तुतः मैंने यथार्थ क्या है, तो वस्तु ही यथार्थ है। तो मूल में क्या है, वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु है, वही उसकी यथार्थता है। और उसको यदि अपनी वस्तु को अपने रूप में, पर की वस्तु को पर के रूप में यदि मान्यता हम नहीं देंगे, याथा तथ्यम इसको बोलते हैं, जैसी वस्तु है उसको उसी रूप में स्वीकार न करना चाहिए, न अन्यत अन्य के रूप में नहीं, न न्यूनम न्यून के रूप में भी नहीं, न अन्यथा विपरीत रूप में भी नहीं, न और अतिरेक कुछ भी नहीं है, कि जो का त्यों ही मान लेना चाहिए, जैसा का जैसा, जैसा है वैसा है, एज इट इज। क्या बोलते हैं आप लोग? एज इट इज। अर्थ है परमार्थ कहते थे, तथा से षड्द्रव्येषु पर्यायः कथ्यन्ते गुण विकारः पर्यायः से द्वेधा, वो दो प्रकार के स्वभाव विभाव के अपेक्षा से। अगुर लोगों विकारा स्वभाव, देखो हमेशा हमेशा अगुर लोगों के जो विकार होते हैं वही स्वभाव पर्याय माने जाते हैं। ये द्वादशदा दस प्रकार के हैं, छह गुणी हानि छह गुणी वृद्धि रूप होते हैं। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, ये क्रम है। ये इसी प्रकार हानि है, अनंत गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, अनंत अनंत भाग हानि और असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि और अनंत गुण तथा अनंत गुण हानि, ये लिखा था इसमें। अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, अनंत गुण हानि एवं षड वृद्धि हानि रूपा स्वभाव पर्याय गया। ये स्वभाव पर्याय हमेशा हमेशा हुआ कर। विभाव पर्याय चतुर्विधा, विभाव पर्याय चार प्रकार के, नर नरकादि पर्याय अथवा चतुरशीत लक्षास्य विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, नर नरकादिक पर्याय अथवा 84 लाख जो विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है, नर नरकादि का विभाव गुण व्यंजन पर्याय, मति ज्ञानादि मति ज्ञानादि स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, चर्म शरीर आकारात किंचित न्यून शुद्ध पर्याय, ये विभाव मति ज्ञानादि के विभाव गुण व्यंजन पर्याय है। मति ज्ञानादि को विभाव गुण व्यंजन पर्याय है, न कि स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय, क्योंकि सम्यक ज्ञान तो है लेकिन सम्यक ज्ञान होते हुए भी विभाव है, सम्यक ज्ञान होते हुए भी वह विभाव नहीं है ऐसा नहीं मानना, केवल ज्ञान तो स्वभाव है और मति ज्ञान श्रोत ज्ञान अवधि ज्ञान मन प्रज्ञान सम्यक ज्ञान होते हुए भी वे विभाव है, इसलिए विभाव और स्वभाव को एक नहीं मानना चाहिए। विभाव की भूमिका में ही श्रद्धान होता है और स्वभाव की भूमिका में अनुभूति होती है। व्यंजन पर्याय चर्म शरीर से जो कुछ न्यून है वह सिद्ध पर्याय है, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है, वो स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय अनंत चतुष्टय रूपा, अनंत चतुष्टय केवल ज्ञान केवल दर्शन केवल सुख केवल वीर, यह स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय माने जाएंगे। हाँ ठीक है उसमें नहीं, इसके पीछे ले लो विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय नर नरकादिका, ये फुल स्टॉप जो है गलत ने कहा, गलत हो गया वो, विभाव गुण व्यंजन पर्याय मति ज्ञानादय, रुक जाओ यहां पर, कहां आ रहे हो, भागो नहीं इधर उधर वहां देखो वो इतना ही इतने मैं जो कह रहा हूं उसको पहले सुन लो, नर नरकादि पर्याय जो विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय के साथ लगा देना और बीच में जो खड़ी पाई है उसको निकाल दो, और विभाव व्यंजन पर्याय यहां पर फुल स्टॉप नहीं, ये मति ज्ञानादय का लाओ, अरे ये प्रेस की मिस्टेक है लिखा नहीं, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय क्या है ये चर्म शरीरात किंचन विचित पर्याय, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय और स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय क्या है अनंत चतुष्टय रूप, सब आ गए ये जीव के हो गए। पुद्गल के देखो अब जनुक आधे विभाव द्रव्य गुण व्यंजन पर विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, जनुक है त्रिणुक है चतुष्क आदि आदि जितने भी है विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है, रस रसांतर गंध गंधांतर आदि विभाव गुण व्यंजन पर्याय, रस से रसांतर होना गंध से गंधांतर होना आदि आदि विभाव गुण व्यंजन पर्याय है। अभिभागी अच्छा देखो यहाँ देखना आप लोगों के इंद्री में पकड़ में जो कोई भी गुण पर्याय आ जाते हैं पुद्गल की वो सारे सारे विभाव गुण व्यंजन पर्याय ही आते, स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय नहीं, यानी रूप को आंख के पास पकड़ने की क्षमता नहीं है किंतु वह काला पीला धूला आदि आदि जो प्रस्फुटित होकर के आपके सामने आ जाते हैं ये विभाव व्यंजन गुण व्यंजन पर्याय हैं जो अनेक द्रव्य मिलने के उपरांत अभिव्यक्त हो जाते हैं। एक दो द्रव्य में परमाणु में रूप रसगंध है वो कभी भी इंद्रिय के द्वारा नहीं, इंद्रियें गेच्छा इंद्रियों के द्वारा वो पकड़ में नहीं आते, शुद्ध द्रव्य का भोक्ता संसारी प्राणी हो ही नहीं सकता, अशुद्ध द्रव्य मिलता है इसको खाने पीने उठने बैठने सब अशुद्ध, किसी भी इंद्रिय का विषय शुद्ध नहीं होता। अविभागी पुद्गल परमाणु स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, जो अविभागी है जिसका कोई भेद नहीं है ऐसा पुद्गल परमाणु ही स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है, वर्ण गंध रसेक कहा अविरुद्ध स्पर्श द्वयम स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय, ये एक एक वर्ण गंध और रस एक एक है और अविरुद्ध दो स्पर्श ये स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय है पुद्गल के, अनादनिधनी द्रव्य स्वपर्याय प्रतिक्षणम उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जलवत् जल कल्लोलवत् जले, जैसे सरोवर में लहर उठ रही है और उसी में समाहित होती चली जा रही है उसी प्रकार अनंत काल से इन द्रव्यों में पर्याय उत्पन्न हो रही है और उसमें लीन हो रही है, पर्याय उत्पन्न हो रही है उसमें लीन होती चली जा रही है, किसी एक पर्याय बाहर आकर के उछल करके हम लोगों के लिए मिलती नहीं है, वो वहीं के वहीं समाहित होती चली जा रही है, ये सिद्धांत है। गुण इति दव्य विहानम दव्य विहा दव्य विहारोत्थपज्जवो भणिदो ते अनूनम दव्यम अजित प्रसिद्धम हवदि निच्चम, गुण किसको कहें दव्य विहायक द्रव्य का विधान करने वाला, द्रव्य को शुद्ध करने का अधिकार किसी को प्राप्त है तो गुण को है। द्रव्य अपने आप शुद्ध नहीं हो सकता, गुण के बिना द्रव्य शुद्ध नहीं होता, और वह भी गुण सामान्य नहीं, विशेष गुण के द्वारा ही द्रव्य शुद्ध होता है, पहचानने में आ जाता है। इसलिए गुणों ही दब विहाव, द्रव्य का विधायक गुण होता है, और दब विहारोत्पज्जो भणिदो। देखो गुण विकारो पर्याय कहा था ना, द्रव्य का विकार ही पर्याय है। ऊपर कहा था गुण विहारो औपचारिक रूप से, द्रव्य का विहारोत्थ, द्रव्य का जो विकास उत्पन्न हुआ वह पर्याय माना जाता। तेज अनुनंदवम, गुण और पर्याय से अनून यानी न्यून नहीं होना ही द्रव्य है। अयुत प्रसिद्धम, अपने आप में सिद्ध है, युत सिद्ध नहीं है, यानी गुण आकर के द्रव्य से चिपक गया, पर्याय आकर के द्रव्य से चिपक गए, ऐसा नहीं है। ये द्रव्य के पास अयुत सिद्ध है, यानी संयोग सिद्ध नहीं है। युत का मतलब संयोग होता, अयुत मैंने असंयोग मैंने उपादान सिद्ध है। द्रव्य जब से है तब से ही गुण और पर्याय हैं, गुण जब से है तब से ही पर्याय, ऐसा नहीं कि द्रव्य ने गुण को या पर्याय को पैदा कर दे बाद में आए, ऐसा नहीं कि हमेशा हमेशा द्रव्य गुण और पर्याय इन दोनों की समष्टि ही। स्वभाव विभाव पर्याय रूपतया याति परिणमति इति पर्याय, पर्याय से उत्पत्ति क्रम वर्तन पर्याय सहभूव गुण गुण्यंते पृथक क्रियते द्रव्यम द्रव्यात यही ते है गुणा ते। स्वभाव विभाव पर्याय रूप से जो परिणम करता रहता है वो पर्याय है, जो कि क्रमवर्ती होती है, और सहब गुण होते हैं जो हमेशा गुण द्रव्य के साथ रहते हैं, अथवा द्रव्य जो है द्रव्यांतर से गुण्य दे पृथक कर लिया जाता है उसका नाम। ननु पर्याया विद्यमाना जायन्ते अविद्यमाना वा इति आसंख्य निरूपण आ। अब ये बताओ द्रव्य में से पर्याय निकलते तो पहले बंधी हुई रहती होगी, जैसे शीशी में शीशी को यूं लड़का देते हैं तो भीतर से घी आ जाता है बाहर, भीतर से तेल आ जाता है, जो रखा रहता है वो आ जाता है। उसी प्रकार जो विद्यमान पर्याय वही बाहर आती है या नई विद्यमान पर्याय बाहर आती है, कैसे होती है हमें बताओ, हमें समझ में फिर भी नहीं आ रहा। हमें तो ऐसा लगता है कि सरोवर में बहुत सारे ढेर सारे जो हैं कि भंडार लहरों की होगी, एक 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 निकल रही है, एक 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 निकल रही है, और वही जाकर किनारे में जाकर के उसी भंडार में चली जाती होगी, ऐसा है हमें बताओ। हम तो ये समझेंगे जो विद्यमान पर्याय है भीतर और वो आते रहते, मतलब अब केवल ज्ञान भी पर्याय विद्यमान है, अब मति ज्ञान निकल जाए, श्रुत ज्ञान निकल जाए, खिसक जाए, अब एक बात पर्याय केवल ज्ञान आ जाएगी, ऐसा है क्या? विद्यमान पर्याय अथवा अविद्यमान पर्याय जायन्ते, ननु पर्याय विद्यमान जायन्ते अविद्यमान वा इति आशंकाम निराकुर्वन् गाथा द्वयेन आह। जदिदव्ये पज्जाया विविज्यमाना तिरोहिदा सन्ति तावुपत्ति विहला पडिपिहिदे देवदत्तेव पडिपिहिदे। देखो द्रव्य में ही विद्यमान पर्याय रहती है लेकिन तिरोहित रहती हैं, ढकी हुई रहती हैं, जैसे कि देवदत्त कपड़े में ढका हुआ है, कपड़े हटा दो देवदत्त सामने आ जाए, राह को ऊपर से हटा दो भीतर से अग्नि आ जाए, ऐसे है क्या? ऐसे हैं तो फिर उत्पत्ति या विफल मानी जाएगी, उत्पन्न हो गई ये कहना गलत हो गया। उद्घाटित होना और उत्पन्न होने में अंतर है ना, जैसे आप लोकार्पण करते हैं या क्या कहते हैं उद्घाटन विमोचन करते हैं, और विमोचन करते हैं किसके विमोचन करते हैं, जो अनावरण करते हैं तो किसके करते हैं, भीतर जो रखा है उसको ऊपर आवरण है उसको अनावरण कर देते हैं, अनावरण का अर्थ जो आवरण को हटाना वह अनावरण हो जाना, ये है। तो उसी प्रकार केवल ज्ञान आदि पर्याय भीतर है क्या? यदि भीतर है तो उत्पन्न होती है ये कहना गलत हो जाता है। ता उपत्ति वेला पड़ी पे दे देवदत्त हुआ, वस्त्र में ढका हुआ जैसे देवदत्त है, वस्त्र को हटा दिया देवदत्त आ गया, लेकिन केवल ज्ञान पर्याय जी भीतर रह आवे तो संभव नहीं हो सकता। केवल ज्ञानावरण कर्म फिर क्या काम करेगा? केवल ज्ञान रूप में ऐसा मानते हो तो वही शंकाकार पूछ रहा है, इसको थोड़ा सा और खोल दो ना कि वह भीतर पर्याय है। पर्याय है मतलब द्रव्य ने पहले ही पर्यायों रूप परिणाम कर चुका है, अब दोबारा परिणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब धीरे कह रहे आप, धीरे शक्ति रूप से है ऐसे क्यों कह रहे हो? शक्ति रूप से ऐसे क्यों कह रहे हैं? आपके पास तो माइक है नहीं, कोई नहीं सुनेगा, हम तो सुन ले। ढीले डाले क्यों बोल रहे हैं? ये तो प्रश्नकार का प्रश्न है। यदि विद्यमान है तो उत्पन्न होना भी फल है, यदि है ही नहीं तो उत्पन्न होना हो संभव कैसे, ये प्रश्न है उसका। हाँ विद्यमान है, दूध में दही विद्यमान है तो खट्टा लगना चाहिए दूध। क्यों सही क्या बोलो ना बोलो। दूध में यदि दही विद्यमान है तो जामुन डालने को कोई आवश्यकता नहीं है। घी है तो फिर मथनी की कोई आवश्यकता नहीं, जामुन डालने की कोई आवश्यकता नहीं, यूं करके निकाल लो। है क्या आवश्यक है? तो फिर तपाओ नहीं, ऐसे निकालो ना। आरंभ क्यों करते? देखो आप आरंभ के त्यागी हैं, कम से कम उस पर उसका तो कम से कम समर्थन करो। घी ऐसे निकाल दो, ऐसे कर दो, क्या आवश्यक है बताओ? मतलब अग्नि से तपना आवश्यक हो गया तो अग्नि के द्वारा घी निकल गया। मतलब हाँ अग्नि भीतर से एक स्रोत है, अग्नि में से लकड़ी में से अग्नि आती है, अग्नि में से घी आता है और भोगने में जाकर के बैठ जाता है। बहुत विचित्र है कि इसी को बोलते हैं शक्ति के रूप में द्रव्य विद्यमान है आत्मा। आज तक विज्ञान ने बहुत पुरुषार्थ किया, अभी कैसा भी निकाला तो है, वेट निकाला आत्मद्रव्य का वेट निकाला। तो क्या निकाला कि मरणासन्न किसी व्यक्ति को अच्छे जो है कांच के जो संदूक है उसमें से लिटा दिया, अब ये एक मिनट के उपरांत उसको समाप्त होना है, फिर इसके उपरांत उसको बिल्कुल पैक कर दिया, हवा भी उसमें से शायद निकाल दिया, हवा भी निकाल दी। हाँ फिर इसके उपरांत पहले वेट करके दिखा दिया, अब जब मरण हो गया देखते हैं उसमें क्या हुआ, तो उसका वेट भी निकाला उन्होंने। लेकिन ध्यान रखना वह आत्मा का वेट नहीं है, निरुपभोग्यम अंत्यम। फिर किसका है वो? ऐसा है कि जब तक श्वास रहता है तब तक वजन अलग रहता है, और पेट में से श्वास सब समाप्त हो जाएगा तो उसका वेट निकल जाएगा। ऐसा हाँ नहीं, भोजन करने के उपरांत आपके वेट बढ़ जाती है तो श्वास जो ले रखा वो भी तो कम से कम एक दो तोला तो होगा। गैस के जो ये है उसमें देख लो, उसी प्रकार वो वेट आत्मा का नहीं है, क्योंकि कार्बन काय के साथ जो रहता है उसके वेट तो आपके तोल में आ ही नहीं सकता, उसको न ही आंखों के द्वारा देखा जाता, माइक्रोस्कोप में भी उसका भामंडलाधिक नहीं आ सकते, ये जैन दर्शन है। हाँ उस परिणाम के कारण उसके इर्द गिर्द जो प्रभाव पड़ता है वह देखने में भले ही आ जाए, संभव है, लेकिन वह नहीं आ सकता, अनुमानिक वस्तु हो सकती है। तो अतः सांख्यादय एवं वदन्ते ऐसे कहते हैं, द्रव्य जीवादि पदार्थे सभ्य पर्याय तिरोहिता, ये सांख्य मत है, जीवादि पदार्थों में सभी पर्याय तिरोहित रहती हैं। वहां पत्थर में मूर्ति है, कहा है ऊपर से छील छाल कर दो भीतर से मूर्ति आ जाएगी, बाहर है विद्यमान आपको नहीं दिखती, शिल्पी को दिखती है वो मूर्ति,
तिरोहित है, आच्छादित विद्यमाना संति तेव जायन्ते उत्पदन्ति, वही तो बाहर आ जाते, सर्वम सर्वत्र विद्यते इति तन्मतम समुत्पाद्य दूषिति, इस मत को दूषित किया। द्रव्ये जीव पुद्गलादि वस्तुनि पर्यायः नर नरकादि बुद्ध्यादयः स्कंदादयः परिणामा विद्यमाना सद्रूपा, जीव और पुद्गल आदि वस्तुओं में नर नरकादि पर्याय और स्कंदादिक परिणाम विद्यमान रहते हैं पुद्गलादिक में। सदरूपा अस्थिरूपा तिरोहिता अंतरलीना भवन्ति, सदरूप हैं अस्थिरूप में ढके हुए हैं, अंतरलीना में भीतर भीतर जीवित हैं। जैसे बालू रेत में ऊपर से सूख गया, नदी ऊपर से सूख गई लेकिन बालू रेत को यूं हटा दो पानी आ जाता है, ऐसा होता है। हाँ, होंठ बिल्कुल सूखे हुए रहते हैं, कंठ भी बिल्कुल सूखा हुआ रहता है और थोड़े से पानी वगैरह देख ले तो मुंह में पानी आ जाता है, तो कहां से आ जाता है? अंतरलीन ना, भीतर रहते हैं। इमली का नाम ले लो हो गएगा, इसलिए रहता है, लोग महसूस नहीं हो पाते लेकिन रहते ही हूं, उनका कहना अंतरलीना अप्रादुर्भूता संति विद्यन्ते, बाहर व्यक्त नहीं होते लेकिन भीतर रहते हैं। यदि चेत तर्हि पर्यायानाम उत्पत्ति उत्पाद निष्पत्ति विफला, यदि इस प्रकार मान ले तो पर्याय की उत्पत्ति निष्पत्ति या विफल हो जाएगी, इसका कोई फल नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। पट पिहते देवदत्त वस्त्र से ढके हुए देवदत्त के समान, यथा वस्त्राच्छेदिते देवदत्ते तस्य देवदत्तस्य वस्त्रे उत्पत्तिर न घटते, वस्त्र से उत्पन्न हो गया ऐसा तो नहीं माना जाएगा, वस्त्र के भीतर था वो ऐसा माना जाएगा। तथा सर्वे नरनारकादि बुद्धयः पदार्थ प्रकृतौ लीनः, इसी प्रकार नरनारकादि जो पर्याय है पदार्थ है वो सारे सारे प्रकृति में लीन रहते हैं। तर्री अंगुल्यग्रे हस्तिशत यूथम कथम न जायते, फिर ऐसी स्थिति में एक अंगुली के ऊपर ही हाथियों के जो सौ सौ का झुंड क्यों नहीं उत्पन्न होता? इति दूषण सद्भावात अविद्यमाना पर्याय जायन्ते, इस दूषण के कारण ही जो विद्यमान पर्याय नहीं वही उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा जाए। सव्वान समय हो गया, अभी समय सव्वान पज्यानम अविद्यमानान होति उत्पत्ति कालायिलद्धिये अनायिनिहनं मितव्यमि। देखो सभी पर्याय अविद्यमान रूप से रहती हैं और उत्पन्न हो जाती हैं, काल द्रव्य, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव की विवक्षा में अपने अपने द्रव्य की योग्यता के अनुसार काल के निमित्त को लेकर के पर्याय वो उत्पन्न हो जाती है। कितने भी आप कोशिश कर लो दूध को दूध के रूप में ही जो का त्यों रखेंगे बिना जामुन के, तो कभी भी उसमें से घी नहीं निकल पाएगा बिना तपाए। एक और कैसे निकालते हैं बताओ? इसी का नाम तो संघर्ष हो गया, फेंट लिया अपने, फेंटने के बाद क्यों कर रहे हैं? यदि उसमें है तो फेटो नहीं, अपने आप आ जाए। हाँ, तो ये भी एक प्रक्रिया है, ये भी एक प्रक्रिया है, हो जाता है। संघर्ष हो गया, संघर्ष होने से गर्मी आ गई, गर्मी होने से ऊपर आ गया। बिना आप संघर्ष के बिना फेटे दूध को रख लो कहीं भी देख लो, ऐसा कोई भी यंत्र अभी तक तो नहीं आया। वो सब निकलता है लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अविद्यमान ही विद्यमान के रूप में आ जाता है। पर्यायानाम नर नरकादि पुद्गलादि नाम द्रव्ये जीवादि वस्तुनि कथम भूते अनादि निधने अविनश्वरे पदार्थे कालादि लब्ध्यः द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव भल्लाभेन उत्पत्तिर भवति उत्पादशात्। कोई भी द्रव्य, जिस द्रव्य में से कोई पर्याय निकलेंगे, काल पहले चाहिए, अब देखो यहाँ पर केवल जीव ही नहीं कह रहे हैं, और भी जितने पुद्गल अधिक हैं। अब पुद्गल के लिए काल लब्धि क्या, पुद्गल के लिए काल लब्धि क्या है, मतलब ये है द्रव्य भी चाहिए, क्षेत्र भी चाहिए, काल भी चाहिए, भाव और भाव भी चाहिए। यदि भाव नहीं है तो नहीं होगा, ये समिष्टि सामान्य रूप से मानी जाती है। पुद्गल के लिए काल लब्धि क्या है, पुद्गल के लिए काल लब्धि क्या, उसमें यह है कि स्वकाल होता है। स्वकाल कब होता है कि बंध को प्राप्त होने योग्य उसका परिणाम न, वह उसका स्वकाल माना जाता है। दीर्घकालिक होने की योग्यता उसके पास रहती है, जगन यदि परिणाम नहीं तो नहीं होगा, और बहुत उत्कृष्ट परिणाम है और उसका भी किसी के साथ नहीं होगा, समान परिणाम होगा तो भी नहीं होगा। यह द्रव्य की वह उस पुद्गल द्रव्य की काल लब्धि का अभाव माना जाए, वो किसी भी प्रकार से किसी मेल को प्राप्त नहीं हो सकेगा, उसके लिए कोई काल लब्धि नहीं। उसका जो परिणाम स्वयं का परिणाम है उस समय होगा। हाँ, तो सामान्य रूप से इतना वेट उसके लिए चाहिए, मतलब उष्णता उसके लिए इतना चाहिए। वह एक महीने की उष्णता ऋतु के अनुसार एक महीना लग सकता मान लो, लेकिन उसको यदि हम तापमान एक महीने में जो देना था वो पहले दे दिए तो पहले 15 दिन में आ जाएगा आपके सामने, खटाक से आ जाएगा। इसी को अविपाक निजरा पाल विषय माली, क्योंकि अभी बाजार में कोई मौसम नहीं है उसका, और हम जल्दी जल्दी करके 15 दिन पहले लेकर के भाव तेजी में आ जाएगा उसका। हाँ, ऋतु विशेष है। हाँ, वर्षा ऋतु में होती है उगने के अपेक्षा से, वर्षा ऋतु के बाद वह आकर के खड़ी हो जाते हैं। तीन तीन फसल ले रहे हैं, वही धान की फसल ले लेते हैं, उगा दो कहीं भी उगा दो, बस सहज रूप से। देखो सविपाक निर्जरा के लिए, सविपाक निर्जरा के लिए अब बिना सिंचाई के लिए करना चाहते हैं तो इसी समय बोना चाहिए, बस। हाँ बोले, बोलो बोलो, सिंचाई के साथ आ जाएगी, आ जाएगी। ऐसा है खेत अपनी है, कुआं अपना है, मशीन अपनी है, सब कुछ अपने हैं, भाव अपने हैं, हैं? इससे क्या मतलब है, योग्यता, योग्यता इसको बोलते हैं, उस द्रव्य की योग्यता भी होना चाहिए। पाल विषय माली है, ऐसा नहीं कि आचार की तरह जो आम है और उसको पाल विषय माली हो गया तो पकेगा नहीं, वो तो आचार की योग्य है, हैं? काल सापेक्ष होते हुए भी द्रव्य सापेक्ष क्यों नहीं कहा जा रहा है, काल तो अपेक्षित। देखो काल सामान्य है, काल सामान्य है, और उस द्रव्य में, उस द्रव्य को जो कहते हो, यदि मान लो आम एक महीने के उपरांत पकेगा ये निश्चित है, इतना काल के द्वारा उसको उष्मा मिल जाएगी निश्चित है, अब पकेगा और उसको तोड़ करके उसी डाल पर लटका दिया, रख दिया उसको, है? क्यों, काल के द्वारा पकेगा, कनेक्शन, कनेक्शन कोई आवश्यक नहीं, काल के साथ तो रखा, आप काल में रखा, एक महीने तक वही पर वहीं कर रखा है। हाँ, आज इस ओर नहीं देखते, प्रतीक्षा करते हुए बैठे हैं तो कहीं भी नहीं होगा। दूसरा देख लो, अब हमने तोड़ा नहीं एक आम को, तोड़ा नहीं उससे, वहीं से वैसे डाल पर ही है वो, तने से लटका हुआ बिल्कुल, और एक महीने हो गया वैसे को वैसे, वो बड़ा ही नहीं हुआ, इतना ही रह गया, रुग्ण हो गया। अब पकाओ देखेंगे पाल विषय माली नहीं, उसमें जैसे स्रोत पहुंचना चाहिए था रस का, वो नहीं पहुंचा, जैसे पोलिया हो जाता है ना, एक पैर में पोलिया हो गया, हाथ में पोलिया नहीं होता ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, होता है हाथ में हो जाता है, लेकिन उसको यूं कह दो कि अर्धांग जिसको बोलते हैं, अब क्या होता है, देखो काल भी है सब कुछ है, लेकिन उसका रस का स्रोत जो है सूख गया। एक हाथ में तो आ रहा है और एक हाथ तो बिल्कुल बढ़िया पहलवान जैसा हो गया, वो एक पैर भी बिल्कुल बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन एक पैर बिल्कुल ही लटक रहा है। ऐसा क्यों? काल भी है मिला, लेकिन द्रव्य ठीक नहीं है। सामान्य काल जो है, काल के बिना वह परिणमन नहीं हो सकता, यह निश्चित बात है, लेकिन द्रव्य अपनी योग्यता, अपनी योग्यता के बिना नहीं हो सकती। इसलिए योग्यता महत्वपूर्ण है, और योग्यता महत्वपूर्ण होते हुए भी 15 दिन के उपरांत मान लो वह फल पकने योग्य हो गया तो 8 दिन में पका सकते हैं, क्योंकि वह पकने योग्य जो योग्यता है वह उस समय है जो 15 दिन पहले उसमें आ जाती है, और 4-5 दिन उसको रख लो निश्चित रूप से आ जाएगा। यह अविपाक निर्जरा की ओर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अविपाक निर्जरा को यदि नहीं मानेंगे तो सकाल में ही यदि मुक्ति होती है तो पुरुषार्थ की कोई भी आवश्यकता नहीं, और मोक्ष मार्ग में भी उसने कुछ काम किया नहीं। है? किसका? निर्जरा तत्व का उल्टा श्रद्धा नहीं है बल्कि इसलिए अविपाक निर्जरा जो होती है उसी के द्वारा मुक्ति होती है। इसलिए सकाल में मुक्ति नहीं होती किंतु अकाल में मुक्ति होती है, क्योंकि अकाल का नाम ही अविपाक निर्जरा है होती नहीं, कभी भी नहीं होते, होती तो आज तक हो जाती। इसलिए काल सामान्य है और उस द्रव्य की योग्यता विशेष है। सामान्य और विशेष मिलकर के, उदासीन और प्रेरण मिलकर के ये सब कार्य निष्पन्न हुआ करते हैं। हो गए ना? कुछ छूट गए क्या? हाँ, पर्यायानाम द्रव्ये जीवादि वस्तुनि किम् भूते अनादिनिधने अविनश्वरे पदार्थे काल अभ्यादिना द्रव्यक्षितकार भावेन उत्पत्तिर्भवति किम् भूतानाम अविद्यमानानाम अस्ताम द्रव्ये पर्यायानाम जो द्रव्य में नहीं है शक्ति के रूप में पर्यायानाम उत्पत्ति शात यथा विद्यमाने मृत द्रव्ये घटोत्पत्ति उचित काले कुंभकारादो सत्येव घटादेय पर्याय जायन्ते तथा जैसे विद्यमान मृत लोंदा हो और उसमें से घट की उत्पत्ति हो जाती है उचित काल में, कुंभकार आदि जब उपलब्ध हो उसके बिना नहीं हो सकते। काल के द्वारा ही यदि उत्पन्न हो तो लोंदा बना करके रख दो और चाक को घुमा दो और भ्रमण करने लग जा, जो ही थोड़ी सी रुकने लग न जाए वह पुनः उसको घुमाओ और बैठे रहो वहां पर। कुंभकार की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि चाक के ऊपर घूमते हुए चौक के ऊपर लोंदा तो रख दिया, अब समय आएगा 1 घंटे में 10 घड़ बन जाएंगे, कुंभकार की कोई आवश्यकता है ही नहीं। काल के द्वारा घूम ही रहा है, उचित काल कौन सा? आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटे में तो कोई ना कोई उचित काल आ ही जाएगा उसको नहीं समझे? उचित काल ये इनके मान लो 5 मिनट कुंभकार के हाथ लगने से 5 मिनट में हो जाता, तो 1 घंटे में कोई ना कोई उचित काल आ ही जाएगा। हैं? नहीं फिर वो गिर जाएगा ना लोंदा हाँ बड़ा वही चित्र है, इतने स्थूल बात को भी हम किस ढंग से स्वीकार कर रहे हैं। परमार्थ सत्य क्या है ये जानते हुए भी काल को ही मुख्यता क्यों, उस द्रव्य की योग्यता क्या वस्तु, मतलब सम्यक दर्शन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के द्वारा निर्जरा नहीं हुए किंतु काल के द्वारा हो गई, तो निमित्त के द्वारा, निमित्त की इतनी मुख्यता हो गई। इसलिए आचार्य ने 2 काल बताए, एक बाहरी काल और एक भीतरी काल। आत्म जो स्वकाल और परकाल, स्वचतुष्टय और परचतुष्टय। स्वचतुष्टय के द्वारा ही कार्य होता है, परचतुष्टय के द्वारा कार्य नहीं होता, क्योंकि परचतुष्टय में कार्य यह नहीं हुआ करता। ऐसा मान करके चलेंगे तो अपने आप ही सिद्ध होगा।
इतना ही रखो बस।